हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 35, 36, 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मानस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गलाः, क्षेमं न विन्दन्ति वीणा यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा, आभीरशुम्भा यवनाकसादय, येनि च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती, वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि, स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत, समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता, भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभु, निर्मायशीति यदमूषु पुरुष, भुङ्क्ते गुणनिशो दशषोडशात्मक, सोलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे, पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखम्बुरुहासवम्, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं
భక్త రూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శాక్తికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవింద. హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి. గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణ్ కి జయ. దూసరే స్కంద్ అధ్యాయ 5 जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण. इस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद मुनि को सृष्टि का परिक्रम बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है. अभी हम श्लोक नंबर 35 में पढ़ेंगे. ब्रह्मा जी कहते हैं स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भित निर्गतः सहस्रो अंग्रिबाह्वक्ष्या सहस्रानन शीर्षवान् स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भित्य निर्गतः सहस्रो अंग्रिबाह्वक्ष्या సహస్రానన శీర్షవాన్ స ఏవ పురుషస్తస్మాత్ అండం నిర్భిత్య నిర్గతః సహస్రోర్వంగ్రిబాహవక్ష్యా సహస్రానన శీర్షవాన్ స ఏవ పురుషస్తస్మాత్. స మతలబ్ వే, ఏవ మతలబ్ సాక్షాత్, పురుష पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वही साक्षात. तस्मात अंडम निर्भिद्य, तस्मात ब्रह्मांड के भीतर में अंडम यानी हिरण्यगर्भ निर्भिद्य विभाजित करके, उसको विभाजित करके ब्रह्मांड के अंदर जब कारण दक्षिण विष्णु आ गए थे ना, फिर उसने उसको क्या किया, उसको विभाजित निर्भिद्य उसको उसमें से निकल आए. निर्गत मतलब वो बाहर निकल आए. और वो किस प्रकार से वो दिखे, वो उसके विषय में बता रहे हैं. सहस्रोर वंग्री पाहवक्ष, सहस्र मतलब हजार, उरु का मतलब होता है जांगे, अंग्री मतलब पांव, बाहु मतलब भुजाए, अक्ष मतलब आंखें, मतलब उनकी हजारों जांगे, हजारों पांव, हजारों भुजाए और हजारों आंखें थी. सहस्र आनन शीर्षवान, सहस्र मतलब हजारों, आनन मतलब मुख और शीर्षवान मतलब सिर सहत. ये एक काल्पनिक दृश्य बता रहे हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब उस ब्रह्मांड से निकलते हैं तो वो हजारों मुखों और हजारों बाहों, हजारों जांघों से सुसज्जित रहते हैं. तर्जमा इसका यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर. तो अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि कारण दक्षाय विष्णु जो कि कारण समुद्र पे ब्रह्मांड के कारण समुद्र में लेटे हुए थे, उनकी सांसों से जब बहुत सारे ब्रह्मांड निकले तो फिर अब वही पुरुष जो है वो गर्भोदशा है. यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना स एवं पुरुषस्तस्मात् अंडम, अंडम मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ यानी जिसके नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उसके उस फूल के अंदर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं. तो उस भगवान को हिरण्यगर्भ कहा जाता है और गर्भो दीक्षाएं विष्णु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यद्यपि भगवान यानी कारण सागर में शयन करते हैं, किंतु वे इससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। ठीक है, फिर हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भो दीक्षाएं विष्णु। ठीक है, और उन्होंने हजारों हजारों पांव भुजा मुंह सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। अब ग्रह है ना, जितने भी लोक हैं, मतलब ऊपर के लोक नीचे के लोक, तो उनके विषय में आगे बताया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये बताया गया ना, हजारों आंखें, हजारों मुंह, हजारों पांव, हजारों सिर, ये सब क्या है, ये अलग अलग लोक हैं और उनको आगे अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, यस्य हावय वैलोकान कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरध सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः, यस्य हावय वरलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरध सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः। यस्य हाव, यस्य मतलब जिसका, इह इस ब्रह्मांड में अवयवय शरीर के अंगों द्वारा लोकान सारे लोग कल्पयंती मनीषणा कल्पना करते, मनीषणा मतलब बड़े बड़े दार्शनिक। यहाँ पर कल्पयंती शब्द आया है कि वो कल्पना करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, मनीषण हैं, वो कैसे कल्पना करते हैं। कट्यादि भी अधसप्त, कट्यादि भी मतलब कमर से नीचे, अधसप्त नीचे के सात लोक, और सप्त ऊर्ध्वम तथा सात ऊपर के लोक, कमर के नीचे सात लोक, कमर के ऊपर सात लोक, जगन आदि भी यानी सामने का हिस्सा। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं, अनुवाद देखिए, बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों का प्रदर्शन करते हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान का ही एक स्वरूप है, ऐसा दार्शनिक लोग कल्पना करते हैं। और इस चीज को श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझा रहे हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले कल्पयंती शब्द के विषय में बता रहे हैं, तो कि कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजों वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। बहुत ही सुंदर और गुप्त शब्द हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे कि भगवान का वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है, ये जो विश्व रूप है वो तो उन लोगों के लिए है जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9.11 में कहते हैं, अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मानुषीम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ तो वो लोग मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। तो जो लोग भगवान, वो कैसे सोचते हैं कि इतना साधारण सा दिखने वाला भगवान कैसे होता, भगवान इतना विशाल होना चाहिए, भगवान तो पूरा ब्रह्मांड में नापने, इतना छोटा सा कृष्ण वो भला पूरे संसार को कैसे व्यवस्थित कर सकता है। तो भगवान बहुत विशाल होना चाहिए, उसका एक दो हाथ नहीं होने चाहिए, हजारों हाथ होने चाहिए, उसके हजारों शेर होने चाहिए, हजारों नेत्र होने चाहिए, भगवान विशाल होना चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजों वाले शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते उनके लिए ही ये विराट स्वरूप की कल्पना है। यदि भी महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के पहलुओं में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि सात ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और सात अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि परम भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। तो वास्तविक बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो सबको भगवान अपने द्वारा ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है कट्यादि भी अदर सप्त सप्तोर्ध्वम जगनादि भी, ऊपर के जो लोग हैं वो कमर के ऊपर के लोग और नीचे कमर के नीचे का हिस्सा नीचे के लोग हैं। और इसी चीज को आगे बताते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 37, पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रो व्यजायतः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रो व्यजायतः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात जो ब्राह्मण है वो क्या है? पुरुषस्य मुखं, पुरुष यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखं, मुख है। क्षत्रमेतस्य बाहवः, क्षत्र मतलब क्षत्रिय, एतस्य मतलब इसके बाहव यानी भुजाएं हैं। ऊर्वो वैश्यो भगवतः, ऊर्वो कहते हैं जांगे को, वैश्य यानी जो वैश्य लोग हैं, जो वर्णिक समाज है, व्यापार करने वाला, वो क्या है? भगवान के जांगे हैं। और पदभ्याम यानी पांवों से शूद्रो व्यजायत, शूद्रो यानी जो शूद्र है, श्रमिक वर्ग है, प्रकट हुआ है। तो ये जितने भी वर्णाश्रम धर्म हैं, वो सारे वर्ण और आश्रम वर्ण जो हैं, जितने भी वो सारे वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो सब भगवान में से प्रकट हुए हैं। मुख में से ब्राह्मण और वक्षस्थल में से भुजाओं में से क्षत्रिय और जांगों में से वैश्य और पांव में से शूद्र प्रकट हुए हैं। उसके विषय में अनुवाद देखिए, ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांव का से उत्पन्न हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे सारे जीव परम भगवान के अंश बताए गए हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के चार विभाग, बुद्धिमान यानी ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग यानी क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग यानी वैश्य तथा श्रमिक वर्ग मतलब शूद्र, ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से शरीर से भिन्न, शरीर से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी खास बात बताए कि वैसे तो अगर अंगों में, पार्ट ऑफ बॉडी में देखा जाए तो पांव भी उसी शरीर का हिस्सा है, मुख भी उसी शरीर का हिस्सा है, लेकिन अगर गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मुख जो है वो सिर या पांव, सिर जो है मुख या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। वो कैसे है? अगर किसी का पांव नहीं है, कोई पांव अगर किसी का कट जाता है तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन अगर किसी का सिर कट जाएगा तो मतलब कहने का ये है कि इस सारे वर्णों में जो ब्राह्मण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांगे शरीर के अव्यय हैं, वो भी तो शरीर के हिस्से हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। परम पूर्ण ये सारे अंग जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, ठीक है। अभी मुंह का काम क्या है? बोलना और खाना। भुजाएं शरीर की सुरक्षा करती हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं, और तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए। अभी ये किस तरह से वर्ण है उनका कार्य समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, बहुत ही सुंदर रीति से। वे कहते हैं, अतिव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्त करने के लिए भोजन भी करना चाहिए। किसको? मुख कौन है? ब्राह्मण है, बुद्धिमान वर्ग। और बुद्धिमान वर्ग का काम क्या होना चाहिए? बोलना चाहिए। किसके लिए बोलना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्राह्मण को इतना चतुर होना चाहिए, इतना शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए कि वो सारे जीवों को भगवान के विषय में बताए, और फिर भोजन करना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण जो होते ना, वो भगवान के मुख के बराबर। तो जब कोई ब्राह्मण को भोजन कराता है तो मतलब ब्राह्मण भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर ब्राह्मण जब खाता है तो वास्तव में भगवान की तृप्ति होती है। जैसे मुख जब खाता है तो फिर ना हमारे शरीर की तृप्ति होती है ना, उसी तरह ब्राह्मण तो भगवान का मुख है। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत बड़ा लाभदायक कार्य है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतिव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्त करने के लिए भोजन करना चाहिए। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ब्राह्मणों की क्वालिटीज बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो भगवान जो होते हैं उनकी क्षुधा मतलब भगवान को इच्छा होती है कि यज्ञ हो। ये भगवान के अंदर एक लालसा होती है कि यज्ञ होना चाहिए। और ब्राह्मण जो होते हैं उन ऐसे ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए ताकि वो भगवान को तृप्त कर सकें। भगवान की क्षुधा, भगवान की तृप्ति कैसे होगी? तो वो यज्ञ करने से होगी। तो ब्राह्मण कैसे यज्ञ करेंगे? इस कलयुग का जो सबसे सुंदर यज्ञ है, जो कलयुग के लिए कमेंट किया गया है, वो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको महामंत्र के जप यज्ञ में निपुण होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण महामंत्र का जप यज्ञ नहीं करता है तो वो अपने वर्ण को सही तरह से पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि चार ही वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नहीं बजे स्वकर्म करीते थे रव रवि पारे मजे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब किसी भी वर्ण और आश्रम में हो, यदि आप कृष्ण को भजन नहीं करते हो तो आप चाहे अपने वर्ण और आश्रम में कितना ही निपुण क्यों न हो, कितना ही एक्सपर्ट तरीके से अपने बाकी धर्मों को पूरा कर रहे हो, लेकिन यदि कृष्ण नहीं बजे, कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो रव रवि परम नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मण को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए, और अधीन वर्ग को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। अभी अधीन वर्ग कौन से हैं? ब्राह्मण मुख है तो भुजाएं क्षत्रिय हैं, कमर वैश्य है, और चरण जो है वो शूद्र हैं। तो वो सब क्या, उनको क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को ऐसे कार्य करने में, ऐसे यज्ञ करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके भगवान का महिमा गान करना। जैसे ब्राह्मण मुख है ना, तो उनका काम क्या है? बोलना। और बोलना किस तरह का? श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करना, अपने आके मानसिक स्पेकुलेशंस बताने के लिए नहीं, जो यथारूप शास्त्रों में लिखा हुआ है वो एज इट इज बताना ब्राह्मणों का काम है, और भगवान की महिमा गान करना। भगवान कितने महान है, कितने असीम है, भगवान से बढ़कर और कोई कृपावान हो सकता है? वो पूतना जो भगवान को मारने के लिए आती है, विष कालकूट विष लगाकर स्तन पर भगवान को विष देने के लिए आती है, उस पर इतनी कृपा कि उसे माता की गति प्रदान कर देते हैं। वो सुदामा जो चावल की दो मुट्ठी लेकर आता है, भगवान
सोच में पड़ जाते हैं कि क्या देकर तृप्त करूं मैं उसे, तो ऐसे करुणा निधि भगवान इससे किं वा दयालु शरणं व्रजे, उनको छोड़कर और कहीं यदि जीव जाता है ये सोच करके उसका कल्याण होगा तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से अधिक कृपालु और कोई हो ही नहीं सकता है। और जीव की तृष्णा, जीव की संतुष्टि इसी में है कि वो भगवान की शरण ग्रहण करे, कि वो भगवान से प्रेम करे, क्योंकि प्रेम के बगैर जीव का रहना संभव नहीं। आपने अपने जीवन में कुछ भी कमा लिया हो, कितना ही धन, कितना ही यश, कितना ही ज्ञान, कितना ही बल, कितना ही सौंदर्य क्यों न एकत्रित किया हो, लेकिन यदि जीवन में प्रेम नहीं है ना, तो आनंद का सवाल ही नहीं उठता, चाहे संसार भर के ऐश्वर्य क्यों ना हो आपके। लेकिन ये प्रेम क्या है जानते हो? ये प्रेम तो कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के अंदर, किसी वस्तु या व्यक्ति में प्रेम को खोजना व्यर्थ है, संभव नहीं है। जीव चाहकर भी ना किसी और से प्रेम प्राप्त कर सकता है और ना ही किसी और को प्रेम प्रदान कर सकता है। प्रेम का विषय केवल कृष्ण है। प्रेम यदि कहीं सार्थक हो सकता है तो भौतिक जगत में प्रेम केवल इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन वास्तविक प्रेम है कृष्ण के साथ। यदि ये कृष्ण साक्षात मूर्तिमान प्रेम है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के ज्ञान का यथारूप में प्रचार करके, भगवान की महिमा का ज्ञान, कि किस तरह से जीव भगवान से प्रेम किए बगैर संतुष्ट नहीं हो सकता है, किस तरह से जीव जन्म जन्मांतर से भगवान के प्रेम के लिए तड़प रहा है, ऐसा ब्राह्मणों को प्रचार करना चाहिए। भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना, यानी कि भगवान की वास्तविक प्रकृति और उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों का वास्तविक स्थिति में प्रचार करना, ब्राह्मण को बताना चाहिए कि भगवान के कैसे कैसे सुंदर अंग हैं, वो कैसे कैसे दिखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, अंगानि यस्य सकले त्रियवेत्यान्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरां जगन्ति आनन्द चिन्मया सदु श्वरा विग्रहस्य। भगवान के सुंदर अंग है और वो प्रत्येक अंग से कोई भी कार्य कर सकते, और जीव का आनंद केवल उसी भगवान के आनंदम चिन्मय, चिन्मय आनंद, जो आनंद का मतलब होता है प्रतिक्षण वर्तमान, प्रेम का मतलब होता है प्रतिक्षण वर्तमान। लेकिन इस भौतिक जगत में प्रेम और आनंद वर्तमान नहीं है, प्रतिक्षण घटते रहते हैं। जिस वस्तु में आप आनंद ढूंढ रहे हो, वो वस्तु का आनंद दिन ब दिन कम होता जाता है, टेस्ट कम होता जाता है। जितना जितना अधिक आपको मिलेगा ना, उतना उतना उसका टेस्ट खत्म होता जाएगा, चाहे वो किसी वस्तु का आनंद हो, किसी व्यक्ति का आनंद हो। जितना जितना आप उसे प्राप्त करोगे ना, उतना उतना वो उसका जो सुकून है, उसका जो तृप्ति है, वो उस वस्तु से खत्म होती जाएगी। लेकिन शास्त्र कहता है रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब परम आनंद प्राप्त होता है, जब भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, तो वो प्रेम और भगवान का जो आनंद है वो प्रतिक्षण वर्धमान है। एक एक क्षण में यदि आनंद की अनुभूति नहीं हुई है ना, तो समझ लेना कि अभी तक उस रास्ते पर कदम रखा ही नहीं। जैसे आप जब रोड पे जाते हो ना, तो आपने कितना सफर तय किया वो कैसा पता चलता है कि कितना भी बाकी रह गया है और कितना सफर हो गया है। रोड के ऊपर कुछ माइलस्टोन लगे होते हैं जिस पर लिखा होता है कि अभी इतने किलोमीटर्स जो है ना आपको और ट्रेवल करना है और इतना हो गया है, इतना सफर आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह भक्ति में आप कितना आगे बढ़े हो उसके भी कुछ माइलस्टोन्स हैं। और सबसे पहला माइलस्टोन क्या है जानते हो, कि जब आप भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हो तो आपको कितना आनंद आ रहा है। भगवान के विषय में श्रवण करने में आनंद नहीं आता यदि, तो समझना अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ। और जब नाम स्मरण हो रहा है तो उस नाम स्मरण में कितना अनुभूति हो रही है कृष्ण की, कितना ऐसा लग रहा है कि आप मैकेनिकल नाम जप कर रहे हो या उससे बात कर रहे हो, यही नाम साधन है और यही साध्य भी है। जैसे जैसे नाम जप करते जाएंगे ना, वो नाम ही नामी का स्वरूप धारण करेगा। कृष्ण भिन्न नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, ये नाम जप नामी बनकर कृष्ण के स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा ना, तभी समझना ये नाम सिद्ध हो गया। जब नाम लेते लेते नायानम कलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया किरा पुलकैर निचितम अभूकदा तावनाम ग्रहणे भविष्यति। जब ये नाम लेते लेते नेत्रों से वर्षा की तरह आंसू गिरने लगेंगे, जब बोलते जब नाम का बोलते समय खटखट होकर कंठ रुद्ध हो जाएगा ना, और ये सारा संसार शून्य आयतन जगत संसार शून्य दिखने लगेगा ना, केवल नाम ही सार्थक दिखेगा, उस समय समझना कि भक्ति आगे बढ़ रही है। बस यही तो पहचान है हमारी भक्ति के आगे बढ़ने की, कि कितना हमें कथा में आनंद आ रहा है, कितना नाम जप में आनंद आ रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्तोत्र वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। भगवद गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। और इस तरह ज्ञान का अंत यानी वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं कि वेदांत का क्या मतलब है। भगवान बता रहे हैं समस्त वस्तुओं के स्रोत भगवत गीता भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवस्थते, मैं सब वस्तुओं का स्रोत हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। और इस ज्ञान का अंत यानी वेदांत क्या है, भगवान को जानना। भगवान कहते हैं कि वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वे समस्त वेदों का एक ही लक्ष्य है मुझे जानना। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करना वास्तविक वेदांत है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर के संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। भगवान कहते हैं ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, ये संपूर्ण जीव मेरे अंश हैं। भगवान जानते हैं बस जीव ही भूल गया है। और ये सत्संग क्यों होता है, जीव को उसी बात को याद कराने के लिए हो रहा है कि हम भगवान के अंश हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव को भगवान के साथ अपने संबंध को जानना चाहिए। जिस तरह शरीर के अंग शरीर के संबंध होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए हुआ है, अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। ये जो मनुष्य का शरीर है ना, वो आहार निद्रा पाई मैथुन के लिए, जानवरों की तरह अपने समय को खत्म करने के लिए नहीं मिला। ये एक जन्म है जिसमें हम भगवान के साथ अपने संबंध को जान सकते हैं
और उस संबंध को पुनः निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में सोने और खाने को इम्पोर्टेंस देकर अपने वास्तविक लाभ से दूर नहीं होना चाहिए। ये सोना खाना न जाने कितने जन्मों से हम करते आ रहे हैं। कितने जन्म होंगे हमारे जब कुत्ते बने होंगे, सुअर बने होंगे, क्या खाया नहीं होगा, क्या सोया नहीं होगा, क्या बच्चे भी तो नहीं किए होंगे। और अगर ये जन्म में यूं ही कुत्ते बिल्लियों की तरह गुजार लिया तो फिर वास्तविक लाभ प्राप्त होने में बहुत देर हो जाएगी। न जाने फिर ऐसा सुंदर अवसर कब प्राप्त हो। ये मनुष्य जीवन जो है उसका एक मात्र लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त करने, हम भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कर लें। इस बीच नवरूपा जी बार बार याद करा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। आगे कहते हैं, इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, बेकार है। यदि भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान को प्राप्त नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं की या भगवान से प्रेम नहीं किया तो कोई लाभ नहीं है मनुष्य जीवन का। इसलिए बुद्धिमान वर्ग को लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। यहाँ पर जैसे श्लोक में बताया गया है, पुरुषस्तस्य मुखं ब्रह्म। अब जब ब्राह्मणों को मुख का वो दिया है, सम्मान दिया है, तो ब्राह्मणों को खाली मुख बनाकर छोड़ नहीं देना है कि हाँ भाई ये बताना कि भगवान ने तो हमें मुख का आदर दिया है और शूद्रों को पैरों का। अगर ब्राह्मणों को मुख जैसा सम्मान दिया है तो उनको काम भी बहुत, मुख के अंदर क्या होता है, बुद्धि होती है ना, शरीर सर जो होता है उसके अंदर बुद्धि होती है। तो बुद्धिमान वर्ग का ये कार्य है कि वो क्या करे। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर कर्तव्य भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग को लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे संबंध का प्रसार करें। उनका काम केवल भोजन खाना और अपने पेट को बढ़ाना नहीं होता है। हर जगह पे जाकर भोजन खा लें, बस विधि विधान करते रहें। लोगों को भगवान के विषय में बताना, भगवान के साथ उनका क्या संबंध है उसका प्रचार करना और सामान्य जनता को सही मार्ग पर ले आना, ये कार्य है ब्राह्मणों का। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। प्रशासक कौन है? क्षत्रिय। उनका कार्य क्या है? जीवों को सुरक्षा प्रदान करना ताकि वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है। व्यापारी जो लोग हैं, जो वैश्य हैं, उनका काम है अनाज उगाएं और सारे संसार में, सारे लोगों में उसको वितरण करें जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुख पूर्वक रहें और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सकें। सुरक्षा जरूरी है। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा। अनाज जरूरी है क्योंकि यदि अन्न नहीं होगा तो जीव सुखपूर्वक रह नहीं सकेगा। तो हर एक वर्ण का एक कर्तव्य है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों की सुरक्षा प्रदान करे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि गाय जो होती है वो दूध देती है और दूध से क्या होता है, ब्राह्मण वर्ग जो होता है उनकी बुद्धि जो होती है वो सही होती है, तंदुरुस्त होती है। तो ये गायों की सुरक्षा करना भी वैश्यों का कर्तव्य होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादक प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त होती है। स्वास्थ्य और बुद्धि किससे प्राप्त होती है? सही दूध, यदि गाय का दूध पीते ना, गाय के दूध से ही ब्राह्मणों को के बुद्धि को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए आज जो है वो ब्राह्मणों के कम होने की एक वजह यह भी है क्योंकि हम गाय का दूध नहीं पीते। गाय के दूध में ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे बुद्धि को शास्त्रों को समझकर ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भैंस के दूध में ये सब नहीं होता है। भैंस तो भैंस होती है, गाय तो वो जीव है जिसके अंदर 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर रहते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, इंद्र, वरुण, चंद्र, सारे देवता जो हैं वो गाय के अंदर होते हैं। और गाय का सार क्या है? दूध। मतलब अगर हम दूध पीते हैं तो सारी देवताओं जैसी क्वालिटीज जीव के अंदर आती हैं, शक्ति, बुद्धि, सौंदर्य। तो गाय का दूध जो होता है वो जीव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है, ये जो दूध है गाय का, उनसे बुद्धि मिलती है और फिर उस बुद्धि के द्वारा परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित कर रखने में समर्थ बनते हैं। आगे है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग मतलब जो शूद्र होते हैं, जो ना तो बुद्धिमान होता है और ना ही शक्तिमान होता है, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अब जो श्रमिक होते हैं, जो शूद्र होते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होती है ब्राह्मणों की तरह, और क्षत्रियों की तरह शक्ति भी नहीं होती है, और ना ही वो अन्न उत्पादन व्यापार करने में ही कुशल होते हैं। तो उनका कार्य क्या है कि वो ऐसे कार्य करें कि उच्च वर्गों की सेवा करें, ताकि जैसे ब्राह्मण होंगे, अगर ब्राह्मण को कोई शूद्र जो है वो सेवा करता है तो वो ब्राह्मण जो है वो अच्छे तरीके से अपने दायित्व को निभाएगा, ज्ञान अर्जित करेगा। अगर ब्राह्मण जो है वो भी घर में सारे काम करने में लग जाएंगे, जो बुद्धिमान वर्ग है वो भी अगर छोटे छोटे कार्य करने में टाइम निकलता जाएगा, तो फिर वो अपने वास्तविक कार्य जिसके लिए उसको जन्म मिला है, क्या प्रचार करना, लोगों को भगवान के विषय में बताना, वो नहीं कर सकेगा। तो शूद्रों को क्या चाहिए? उच्च वर्गों की सेवा करके उनको सहायता करनी चाहिए और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। फिर क्या होगा? ब्राह्मण जब शूद्र जब ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो उनकी सेवा करने से उनको लाभ मिलेगा, या तो उनको अच्छा जन्म मिलेगा, या उनकी सेवा करने से उनको भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करेंगे। अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के स्वभाव में सारा मानव समाज असत व्यस्त रहता है तथा इसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बड़े दुख के साथ बता रहे हैं कि समाज में शांति क्यों नहीं है, संपन्नता क्यों नहीं है। आज अगर देखा जाए तो संसार कितना ज्यादा एडवांस हो गया है, कितनी सारी इन्वेंशन हो गई हैं, कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन कहीं पर सुख नहीं है, कहीं पर शांति नहीं है, कहीं पर आनंद नहीं है। उसका कारण जानते हो क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध का अभाव। ये सारा समाज जो है वो भगवान से दूर होकर प्रोग्रेस करना चाहता है, अपने आप को एडवांस बनाना चाहता है। वो हम सोचते हैं, आज का जीव सोचता है कि भगवान से दूर रहकर आनंद और शांति की खोज करके दिखाऊंगा। वो सोचते हैं दूसरों को नहीं मिला सुख तो मैं तो स्पेशल हूं ना, मैं करके दिखाऊंगा, धन अर्जित करूंगा और उसे आनंद प्राप्त करके दिखाऊंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा और उसे आनंद प्राप्त करके दिखाऊंगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी कभी आनंदित नहीं होते, पूछ कर देख लो भले आप। प्रैक्टिकल है, संसार में शांति और आनंद रखा नहीं है उस बनाने वाले ने। ये शांति, ये आनंद केवल भगवान के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। एक बार एक पोता था, अपने दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपके जमाने में लाइट्स होती थी? तो दादाजी ने कहा नहीं बेटा। तो बोला फैन होते थे? फैन में नहीं चलते थे गर्मी में? बोला नहीं चलते थे। बोला आपके जमाने में लैपटॉप होता था? बोला नहीं। बोला मोबाइल होता था? बोला नहीं। बोला आपके जमाने में इंटरनेट भी नहीं होता था। बोला नहीं बेटा ये सब नहीं होते थे। तो बोला आप लोग बात कैसे करते थे, आप लोग जीते कैसे थे, मतलब ये कैसा जीना है जिसमें ना लाइट है, ना फैन है, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं, आप जीते कैसे थे। तब उसके दादाजी ने बताया बहुत ही गंभीर वाणी में एक उत्तर दिया, बेटा उसी तरह जी लेते हैं जिस तरह से आज के लोग जी रहे हैं। न शर्म है, न हया है, न भक्ति है, न हृदय के अंदर किसी के लिए सिंसियरिटी है। बगैर इन सब के बगैर में जब जी सकता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बगैर कैसे जी सकता है। ये कोई मजाक बात नहीं है, ये वास्तविकता है। जैसे जैसे जीव एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे भगवान से दूर होता जा रहा है, भगवान के साथ अपने संबंध को भूलता जा रहा है। पहले ऐसे थोड़े होता था कि सुबह सवेरे उठे बस नाश्ता हाथ में पकड़ा और शूज सॉक्स पहने आधे और लिफ्ट में उतर गया और है ना ऐसे ऐसे करके बस चला गया, वो अपने ऑफिस में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। इतनी लाइफ को इतना ज्यादा है ना व्यस्त कर दिया है, इतना कठिन कर दिया है कि भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकलता जीव का। और ये सारा दुख, ये सारी अशांति तभी समाप्त होगी जब जीव भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः निर्माण करेगा। ये एक शुद्ध वैष्णव के वाक्य है कि भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा समाज अस्त व्यस्त रहता है तथा इसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः। तो वास्तविकता क्या है, जीव को अपनी स्थिति समझनी है कि मैं कौन हूँ। मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे आनंद चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में प्राप्त होगी, भगवान के नाम में प्राप्त होगी, भगवान की कथा में प्राप्त होगी। संसार में किसी और वस्तु या व्यक्ति के अंदर ना प्रेम प्राप्त होगा, ना शांति प्राप्त होगी और ना ही आनंद प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 38। भूलोक कल्पितः पद भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः। भूलोक कल्पित पद्भ्याम, भू कहते हैं पाताल तक सारे अधलोक भूलोक, ठीक है, पाताल तक जितने भी नीचे के लोक हैं। कल्पितो कल्पित कल्पना किया जाता है, किया गया है पद्भ्याम पांव से, जो भूलोक हैं यानी पाताल तक सारे अधलोक। पाताल तक कौन से होते हैं, अतल वितल दशातल महातल पाताल जो है वो सारे क्या है, भूलोको कल्पिता पदभ्याम, वो पांव से कल्पना की गई है। भूव भूव मतलब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लोक। भूवलोकस्य उनके यानी भगवान की नाभितः नाभि से, और हृदय से स्वर्लोक, स्वर्लोक मतलब देवताओं द्वारा निवासित ग्रह मंडल जो स्वर्ग लोक वगैरह है वो क्या है हृदय से, और उरसा यानी वक्षस्थल से महरलोक। महरलोक कौन से है, ऋषियों मुनियों से विभूषित जो जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, महात्मना यानी भगवान का। अनुवाद, पृथ्वी तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं, ठीक है, थीके? सिर्फ पांव तक कितने हैं, पृथ्वी तक अधोलोक, और जैसे नीचे के लोक होंगे अतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल, और भूवरलोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित हैं, जो भूवरलोक जनलोक तपलोक इस तरह से, और उनसे उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों महरलोक उनका निवास नाभि तक, वे भगवान के वक्षस्थल में आते हैं, जो स्वर्ग लोक वगैरह हैं वो भगवान के वक्षस्थल पर है। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं, निम्न ग्रह मंडल भूर्लोक कहलाते हैं, बीच के भूर्लोक कहलाते हैं, बीच के भूर्लोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वर लोक कहलाते हैं। ये सभी लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। और वक्षस्थल से ऊपर के बारे में आगे बताते हैं श्लोक नंबर 39 में। वे कहते हैं ग्रीवायां जन लोकोस्य तपोलोकस्तनत्वयाम् मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकस्तनत्वयात् मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन ग्रीवायाम यानी गर्दन तक, वक्षस्थल से लेकर गर्दन तक क्या है जनलोक, और जनलोकस्य यानी उनका तपोलोक यानी तपोलोक स्तन द्वयम वक्षस्थल से प्रारंभ होकर मूर्धभी यानी सिर से सत्यलोक, सत्यलोक सत्यलोक जो है वो सिर है, तू मना लेकिन मूर्धभी सत्यलोक तू तू के बाद मतलब लेकिन, अब वो ये शरीर खत्म हो गया ना सिर तक, उसके बाद ब्रह्मलोक है वो क्या है सनातन है, ब्रह्मलोक यानी आध्यात्मिक लोक, सनातन यानी शाश्वत है। आगे कहते हैं अनुवाद देखिए, भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपलोक स्थित है। ठीक है, वक्षस्थल से गर्दन तक जनलोक और तपलोक, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है और इस लोक से उस वरन की पुष्टि हो रही है, ब्रह्मलोक सनातना वो शाश्वत है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवत गीता 8.20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहाँ ये कहा गया है कि भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है। ये 14 लोकों को पार करने के बाद एक आध्यात्मिक आकाश है, उसके बारे में जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, हम अक्सर बोलते हैं ना ब्रह्मलोक, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है, उसको सत्यलोक। अभी देखो कभी कभी ऐसा होता है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा जी वहां पर रहते ना तो उसको हम लोग ब्रह्मलोक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जनलोक तपलोक महरलोक सिद्धलोक स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, लेकिन वो ब्रह्मलोक जो है असल में उसका नाम क्या है सत्यलोक, और यहाँ पर जो ब्रह्मलोक बताया गया है सनातन है वो आध्यात्मिक लोक है। इसी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख है वह सत्यलोक नहीं है, यह ब्रह्मलोक शाश्वत है। जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं है, सत्यलोक कौन सा है जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं वो शाश्वत नहीं है। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान संपूर्ण रूप में से आत्मा है और उनके नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। इस तरह भगवान के धाम के लोक भी उनसे अभिन्न है। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, ना वहाँ इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव होता है। यहाँ पर काल का प्रभाव ना होने के अतिरिक्त ब्रह्म लोक के सारे लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक सूक्ति एकम एवा द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस सनातन विविधतामय आकाश में हो जाते हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही गूढ़ बातें बता रहे हैं, जिसमें ये कि ये जो भौतिक जगत है उसमें और उसके बाद जो ब्रह्मलोक का सनातन लिखा हुआ है ना, उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अभी यहाँ तक भौतिक जगत के जितने भी लोक हैं वो भौतिक वस्तुओं से बने हुए हैं, बनेंगे फिर समाप्त हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब चीजों से निर्मित ये 24 तत्वों के बने हुए ये सारे 14 लोक हैं। लेकिन उसके बाद जो लोक स्टार्ट होते हैं वो सनातन है, और उसके उनका कैसे कॉम्पेरिजन किया गया है भगवान के साथ। जिस तरह भगवान का नाम, यश, गुण, लीलाएं सब अभिन्न है, उसी तरह से भगवान का जो लोक है वो भी शाश्वत है, वो भी नित्य है। और इस यहाँ पर जिस श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव इस वैदिक सूक्ति एकम एवा द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति है। वो जिस तरह से भगवान एक ही है और उनमें शरीर और आत्मा का कोई भी भेद नहीं, उसी तरह से भगवान के लोक भी शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो भी सनातन है। तो ये कैसे है? वो तो जो वहां पर जाएगा ना वही उसके विषय में सही तरह से समझेगा। हम तो केवल शब्दों के द्वारा उसको, जैसे आचार्यों ने बताया, उसको बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस तो करना जैसे समझ में नहीं आएगा ना कि वो कैसे होते हैं, जहाँ पर ना बिजली की जरूरत होती है, ना सूर्य और चंद्रमा की, जैसे भगवान बताते हैं, न तद दासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम ब्रह्म। तो ये कैसा होता है? वो तो जो वहां पर जाते हैं उनको ही अनुभव होता होगा। यहाँ पर तो हम इतना ही समझेंगे कि ये भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूप मृग मृचिक मात्र है, और छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। छाया है ये जो भी भौतिक जगत में, जैसे हम 15वें अध्याय में पढ़ते थे ना, ऊर्ध्व मूल मद शाखम चंदन, तो ये ऊपर जो है वास्तव में वृक्ष जो है वो कहीं ऊपर है। ये संसार जो है वो केवल छाया मात्र है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, और छाया होने के कारण ये शाश्वत भी नहीं है। इस द्वैतपूर्ण यानी आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कोई कंपेयर नहीं है उन दोनों का। आध्यात्मिक जगत ऐसा होगा, कोई कंपेयर है ही नहीं, तुलना ही नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस जगत से वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीवों तथा उनके कार्यकलापों को एक समान कर लेते हैं। अब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शोक की बात है कि लोग है ना बुद्धिमान नहीं होते हैं, और जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान की लीलाओं को भी ऐसे ही समझते हैं कि भगवान ने चोरी की, वो स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार करते थे, रासलीला खेलते थे, या फिर ये जो भी भगवान के कार्यकलाप होते हैं वो भौतिक जगत के लोगों के जैसे नहीं होते। कभी कभी तो लोग मूर्खतापूर्वक ये तक कह देते हैं, जब भगवान ने 16,108 शादियां की तो हमें 10-12 करने में क्यों रोका जाता है। भगवान से साथ कोई कंपेयर है? वो कंडम जीव, वो नाली का कीड़ा, वो भगवान के साथ अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है? भगवान ने पूरी सृष्टि को पैदा किया है, भगवान पूरी सृष्टि के स्वामी है, वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या उनके जैसा हमें कार्य? जब भी भगवान ने 16,108 रानियों से शादी की थी तो वो भगवान के अंदर इतनी शक्ति थी, को एक समय में सबके साथ रहते थे, वो हर समय हर रानी को संतुष्ट रखते थे, हर रानी के लिए उन्होंने पूरा अलग से समय और उनको पूरा यश और ऐश्वर्य प्रदान किया। आज का व्यक्ति तो अपनी एक पत्नी को भी सुरक्षित और सम्मान प्रदान नहीं कर सकता है और चला है अपने भगवान के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत की तुल्यमान बैठता है और इस तरह से वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीवों तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.11 में ऐसे कम बुद्धिमान लोगों को की भर्त्सना करते हैं। अवजानंति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति यानी आत्ममाया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए शिला श्रीधर गोस्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो भगवत धाम है और सनातन है। अतएव वह पूर्ण विवरण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। जो पहले पूर्व जो भौतिक सृष्टियां बताई अतल वितल रसल महातल सतल, ऐसा ये ब्रह्मलोक नहीं है। देखो तू लगा है ना बीच में, इसे बताए मूर्ध भी सत्य लोक तू तू, लेकिन ब्रह्मलोक सनातन जो भगवान का लोक है वो सनातन है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि अतएव वह पूर्व वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है, इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। ये वास्तव में भगवान के धाम में भगवान का कोई विराट स्वरूप नहीं है, एक कल्पना है। जो दार्शनिक लोग हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने कल्पना बताई है कि यहाँ से यहाँ तक भगवान का ये शरीर का ये हिस्सा ये हिस्सा, ये केवल इस भौतिक जगत को भगवत स्वरूप बनाने के लिए कि ब्रह्मांड के कण कण में भगवान की सत्ता है, भगवान का कंट्रोल है, इसलिए इस तरह से बताया गया। वर्णन श्री प्रभुपाद जी ने अंतिम लाइन में ये पूरी बात क्लियर कर दी कि इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।